नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक खास पुस्तक है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, और उसी के एक अध्याय नर और नारी की एकात्मता पर आज हम गहराई से विचार करेंगे। हमारा मकसद है वंदनीय माता जी के नजरिए को समझना कि पुरुष और नारी वो असल में एक कैसे हैं, अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक। अध्याय की शुरुआत ही एक बुनियादी सवाल से होती है। वंदनीय माता जी कहती हैं कि समस्या असल में तब शुरू हुई जब नारी को पुरुष सत्ता का अभिन्न अंग नहीं माना गया, बल्कि उसे आप कह सकते हैं कि उपयोग का साधन समझा जाने लगा। यहां से बात थोड़ी विचारणीय हो जाती है ना?
हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये नजरिया ये सीधे सीधे उस सोच को चुनौती देता है जहां नारी को बस एक वस्तु या साधन समझा जाता है। वंदनीय माताजी बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि वास्तविकता में दोनों इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करने की बात ही नहीं उठती, तो फिर ये भोक्ता और भोग्य वाला रिश्ता कैसे बन सकता है भला?
सही कहा, ये तो बराबरी और साझेदारी का रिश्ता हुआ फिर।
और इसी जुड़ाव को समझाने के लिए वंदनीय माता जी ने नारी के अलग अलग रूपों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। जैसे माँ का रूप है, पत्नी का है, बहन और बेटी का। माँ के रूप में वो सिर्फ जन्म देने वाली नहीं, वो सृजन करता है, पोषक है, संरक्षक है, वो दाता है, उपभोग की सामग्री नहीं।
बिल्कुल,
दाता ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ, और दाम्पत्य जीवन में देखें तो पत्नी के रूप में वो सरसता लाती है, सहकारिता, सेवा। वंदनीया माताजी ने तो उन्हें एक तरह से आश्रयदाता, अन्नदाता, जीवनदाता, कामधेनु कहा है, जिसके लिए मन में बस कृतज्ञता ही आ सकती है।
जी हाँ, कृतज्ञता। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े फलक पर देखें तो बहन और पुत्री के रूप में नारी का जो स्नेह है, जो सौजन्य है, वो पुरुष में बल्कि यूं कहें कि पूरे समाज में शालीनता और श्रेष्ठता जैसे गुण जगाता है। वंदनीय माताजी का तो ये भी मानना है कि शायद इन रिश्तों के बिना मनुष्य भावनात्मक रूप से उतना विकसित ही ना हो पाता, वो पशुता से ऊपर उठकर।
अच्छा।
हाँ, वो उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं, वो प्रेम शायद अनुभव ही नहीं कर पाता। और ये रिश्ते सिर्फ नारी को प्रतिष्ठित नहीं करते, पुरुष को भी भाई और पिता के रूप में वही गौरव, वही सम्मान दिलाते हैं। तो एक तरह से आपसी रिश्ता है।
अच्छा, ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। फिर वंदनी माता जी एक और विचार सामने रखती हैं। वो कहती हैं कि अगर भेव करना ही चाहें हम, तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि मानवीय काया जो शरीर है वो नर है, और जो मानवीय आत्मा है उसे नारी कहा जा सकता है।
हाँ, ये एक दार्शनिक पहलू है।
हाँ, और वो मानती हैं कि इन दोनों का जब गहरा सहयोग होता है, उच्च स्तरीय मिलन होता है, वही असल में देव जीवन है। मतलब ऐसा जीवन जिसमें आंतरिक उल्लास भी हो और भौतिक सुख भी। तो ये देव जीवन सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये इस आंतरिक एकात्मता का नतीजा है।
बिल्कुल। और ये जो एकात्मता का विचार है ना, ये सिर्फ साथ साथ रहने या सह अस्तित्व जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आंतरिक संबंध है, एक सहयोग है जो एक उच्चतर जीवन की ओर ले जाता है। और इससे फिर ये सवाल मन में आता है कि ये दृष्टिकोण समाज में जो आम धारणाएं हैं उनसे कितना अलग है, जहां अक्सर भेद पर, अलगाव पर जोर दिया जाता है।
हाँ बिल्कुल। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस अध्याय का सार क्या समझे हम? वंदनीय माता जी पुरुष और नारी को अलग अलग या मतलब ऊंच नीच के तौर पर तो बिल्कुल नहीं देख रही।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो उन्हें एक ही संपूर्ण इकाई के दो अविभाज्य हिस्से मानती हैं, जो मौलिक रूप से एकीकृत हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जिनका संयोग ही एक समृद्ध, एक बेहतर मानवीय अनुभव बनाता है। ये वाकई एक संपूर्णतावादी नजरिया है।
एकदम सही कहा आपने, संपूर्णतावादी। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं कि वंदनीय माता जी ने जिस एकात्मता और आपसी सम्मान की बात की है, अगर इस नजरिए को हम सच में आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें, तो आज के समाज में हमारे आपसी व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है, जरा सोचिए इस पर।